ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரபிரம்மா பரமேஸ்வர் உன்கே சீம கிருபாசி मानव का जो लक्ष्य है, जिस सुख को प्राप्त करना, उसके लिए हम लोग ऋग्वेदीय ऐतरीय उपनिषद के ऊपर विचार में प्रवृत्त हो रहे। यदि किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, महाराज अभी तक ऐतरीय उपनिषद का विचार ही हुआ नहीं, पहले दिन ही मैंने बता दिया था उपनिषद हम चिंतन कर रहे, विचार कर रहे, उसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन को जानना चाहिए। प्रयोजन तो एक ही है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। एक शब्द से यदि कहना हो, सुख स्वरूप जो अपना आत्मा है उसको पहचानना। क्या अभी भी हम आत्मा को नहीं पहचान रहे? क्या अभी भी हम लोग आत्मा को नहीं जान रहे? अवश्य जान रहे, उसके बिना कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता। जो भी आप जागृत में देख रहे, जागृत में अनुभव कर रहे, स्वप्न में देख रहे और सुषुप्ति में जाके अनुभव कर रहे, उसी के द्वारा है। किंतु जो आत्मा सुख स्वरूप होने पर भी दुखी हो रहे, कोई व्यक्ति नहीं मैं सुखी हूं गारंटी नहीं बोल सकता, तो दुखी हो रहे हैं क्यों? पहले हम दुखी क्यों हो रहे उसको जाने, तभी हम दुख को निवृत्ति के लिए प्रयास करेंगे। दुख का कारण ही पता नहीं तो हम उपनिषद के द्वारा निवृत्ति किसको करेंगे? तो इसलिए पहले भी एक दिन बताया था, दो वस्तु होते, एक ग्रहण करने के लिए विचार किया जाता है, एक त्यागने के लिए। देखिए तुलसी रामायण में भी तुलसीदास ने पहले वहां दुर्जनों का खूब वर्णन किया है, सज्जनों को बाद में किया है, क्योंकि सज्जन आपको कुछ करेंगे नहीं, दुर्जन ही परेशान करेंगे। कम से कम दुर्जन को तुम पहचानो। और यदि न्याय के ग्रंथ में जाके देख लीजिए आप, वहां एक हेतु आभास प्रकरण आता है, हेतु आवास का अधिक वर्णन किया है, हेतु का कम है। उसको छोड़ दीजिए, उपनिषद में देख लीजिए, सारे शास्त्र में देख लीजिए, परमात्मा का वर्णन ज्यादा नहीं है, उसके क्या वर्णन करेंगे? तो अकेला है वो, उसका क्या वर्णन करेंगे? सारा सृष्टि का वर्णन है पूरा, इसमें भी यही आएगा, अपना ऐतरीय में भी जितना भी जो वर्णन हो रहा है सृष्टि का ही। तो इसी प्रकार सृष्टि का वर्णन इसलिए आपको त्यागने के लिए, बात करने के लिए। वैसे ही आत्मा दुखी क्यों है, ये दुखी क्यों है, दुख का कारण को यदि हम खोज लिया तभी उस कारण को हम मूल सहित हटा सकते। जैसे किसी को रोग आ गया, डॉक्टर दवा दे रहे, रोग ठीक नहीं हो रहे, दवा के ऊपर दवा दे रहे, रोग ठीक नहीं हो रहे, क्यों? उस रोग का जो कारण है वो नहीं पकड़ दिया। जिस समय में रोग का कारण पता होगा उसी समय में ठीक हो जाएगा। वैसे ही यहां दुख का कारण जानकारी होना चाहिए, तभी जाके उपनिषद का श्रवण मनन निदिध्यासन के द्वारा उस दुख को हम निवृत्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे तैतरीय उपनिषद के द्वारा जो निवृत्त करने वाला जो दुख है कहां से आया, क्या आकाश से टपक पड़ गया होगा? नहीं, पहले दिन कहा दिया था मैंने शरीर परिग्रह, शरीर के साथ संबंध होना, शरीर रहने से कोई आपत्ति नहीं, रहने दो, तुम दृष्टा बनो, उसका साक्षी बनो, किंतु ये मानने के लिए तैयार नहीं मैं उसका कर्ता भोक्ता मान लिया। तो इसलिए शरीर परिग्रह के कारण ही ये सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा दुख हो रहे। पुनः जिज्ञासा हो गई थी, शरीर क्यों प्राप्त हो रहे, शरीर भी एक कार्य है, तो बताया था कल कर्म के द्वारा, कर्म के भी व्याख्या हो गई थी, मनुष्य कर्म भी क्यों करता है, बिना कारण से कोई कर्म नहीं कर सकता है, चाहे तो पुण्य कर्म हो अथवा पाप कर्म हो। तो पुण्य कर्म करता है राग के कारण, आसक्ति के कारण, और पाप कर्म करता है द्वेष के कारण। तो राग और द्वेष के कारण ही कर्म करता है मनुष्य। जिसके अंदर राग और द्वेष नहीं है वो कर्म नहीं कर सकता। पिछले राग के कारण ही ये कर्म कर रहे, राग भी मनुष्य के अंदर क्यों उत्पन्न होता है, कारण क्या, द्वेष क्यों होता है, विचार करने पर अभिमान, अभिमान के कारण ही होता है। देखिए जिस व्यक्ति के अंदर यदि अभिमान नहीं हो, राग नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान नहीं, द्वेष भी नहीं होगा, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा नारा है, तो द्वेष संभव नहीं होगा। तो इसलिए जो अभिमान के कारण ही राग और द्वेष कर रहे मनुष्य, स्वयं शिव स्वरूप होने के बाद भी अभिमान के द्वारा वो जीव बन रहे, अरे किसको लेके तू अभिमान कर रहे हो, क्या ये शरीर को लेकर, अथवा ये अंतकरण को लेकर, अथवा धन को लेकर, थोड़ा सा विचार करो, क्या इसने तुझे साथ दिया, क्या साथ देगा, नहीं। जैसा कोई मर जाता है व्यक्ति, वो सोच रहे मेरे साथ सब आ जाएंगे, अभिमान करके बैठा है, तभी बोलते सारा परिवार हम आपके साथ नहीं आएंगे, तो शरीर भी कहते हम भी नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका चिता तक आएंगे, आगे नहीं आएंगे। तो विचार करता है मेरे साथ जाने वाले कोई नहीं है, सारे संसार में मैं इतना ये किया, कोई भी तैयार नहीं हो रहे। तभी वहां दो व्यक्ति खड़े होते, डरो मत हम है आपके साथ में, ये दो व्यक्ति और कोई नहीं, आपने किया हुआ पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म। वो कहते अरे मित्र तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए एक मित्र है एक शत्रु है, दो खड़े होते आपके साथ जाने। इसलिए शास्त्र में कहा धर्मानुगो गच्छति जीव एक, अकेला आया है अकेला ही जाना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं। ये भूल है अभिमान के कारण मान के बैठे है, मेरा है मेरे साथ में चलेंगे, इसलिए अभिमान के कारण ही व्यक्ति राग द्वेष करता है। इसलिए कहा दिया है साधक को अभिमान को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। स्पष्ट कहा दिया है अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समहा प्रतिष्ठा सुकरे विष्टा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत। ये जो अभिमान है जिससे राग द्वेष हो रहे वही आत्मा को दुखी कर रहे वो कैसा है अभिमानम सुरापानम। सुरापान बोल तो जो मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति उसकी स्थिति कैसा होते है जानते। अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी ने वहां तीन प्रकार का मदिरा गिना दिया है जव्वे गौड़ी पिष्टी करके। एक जव से बनाया जाता है एक मव्वे से एक गुड़ से बना जाता है और चौथा जो मदिरा है वही अभिमान है मोह है। उसी को ही राजा भर्तृहरि ने स्पष्ट कह दिया पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरम उन्मत्त भूतम जगत। उसको मोहमयी मदिरा कहा यहां अभिमान बता रहे। जैसा कोई तीन प्रकार का जो मदिरा पान करता है शराब करता है पीता है सायंकाल पिए सुबह उतर जाता है उसका नशा। किंतु ये जो अभिमान रूप जो सुरा है वो उतरने वाला नहीं ये नशा चढ़ते जाता है उसको। इसलिए बता रहे अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समा। गौरव कहते बड़प्पन। अरे किसको लेके आप बड़प्पन कर रहे ये नाशवान पदार्थ है क्या आपको बड़प्पन बता देंगे? संभव नहीं है। यदि आपके अंदर बड़प्पन है उसको आपने भूल गए। यदि आपके अंदर वैभव है उसको आपने भूल गए। जो नहीं है उसको मान करके आप बड़प्पन कर रहे हो। इसलिए जो गौरव है रौरव के समान है। सात प्रकार के नरक है पुराण में तो 21 गिना दिया किंतु भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में सप्तते सात है वे। क्योंकि 21 नरकों को ये सातों के अंतर्भूत किया है सप्तते करके। उसमें एक रौरव नरक है तो इसीलिए यहां बता रहे गौरवम रौरवम समा। यदि आपका बड़प्पन करते हैं रौरव नरक के समान है। प्रतिष्ठा सुकरे विष्टा। जो प्रतिष्ठा है मान बढ़ाए मुझे प्रतिष्ठा मिले जहां भी जाए तो मेरा जय जयकार करे। किसका जय जयकार करेंगे? क्या आत्मा की अथवा शरीर की? दोनों में भी संभव नहीं है। जैसे कोई एक संत थे तो जा रहे थे अच्छे लोग भी होते हैं खराब व्यक्ति भी होते हैं। संसार इसी का नाम विचित्र रहा रुचि नाम वैचित्र्य। उसको कोई गाली दे रहा था ये संत बन गया ऐसा ही घूम रहे खा रहे करके। दूसरे ने कहा महाराज वो व्यक्ति आपको गाली दे रहे आपकी निंदा कर रहे। संत ने कहा आत्मानम निंदन्ति चेत् स्वात्माना स्वयमेव च। अरे बेटा वो किसकी निंदा कर रहे? आत्मा की। अरे आत्मा की निंदा कर रहे स्वयं की वो निंदा कर रहे। आत्मा तो सबके अंदर है जिसमें हम विचार में प्रवृत्त हो रहे अभी। और शरीरम निंदन्ते ते शरीर का यदि निंदा करते सहायस्ते जना मेरा सहायता कर रहे वो गलत कहां कर रहा है? शरीर तो निंदनीय ही है। शरीर की यदि महत्ता है उसके अंदर एक तत्व है उसके कारण महत्ता है जिसके द्वारा हम परिचय दे रहे मैं डॉक्टर हूं मैं इंजीनियर हूं मैं महात्मा हूं मैं अमुक हूं करके। अरे जिसके अस्तित्व से आप परिचय दे रहे उसको भूल गए। और जो बाहर जो परिचय है उसको आपने बड़प्पन मान लिया। वही शरीर में ना हो तो कौन पूछेंगे उसको, उठा के स्मशान में ले जाएंगे, कहां गए आपका डॉक्टर, कहां गए आपका महात्मा पद। उस तत्व को हम भूल गए। शास्त्र यही बता रहे उसको तुम जानो, जिसके सत्य के द्वारा, जिसके अस्तित्व के द्वारा आप सारा परिचय दे रहे, इसके लिए मिला है मनुष्य शरीर। और जिसका जो परिचय दे रहे वो तो आप नहीं है, आप उसको देखने वाले हो, आप उसका दृष्टा हो। अच्छा कर रहे आप देख रहे, खराब कर रहे आप देख रहे, झूठ बोल रहे आप अनुभव कर रहे, सत्य बोल रहे आप है, ये आपका स्वरूप। आप है इसलिए जगत है, जगत है इसलिए आप नहीं, क्योंकि आपका अस्तित्व के द्वारा ही जगत सिद्ध होता है, अन्वय विद्रेक के द्वारा भी सिद्ध होता है। इसलिए अभिमान जो है ये रागादि का कारण। तो अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समः प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। ये जो आपका मान सम्मान है सूर के विष्ट के समान है। इसलिए हे साधक त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत। ये तीनों को तुम त्याग करके जो हरि है, हरति पापम इति हरि, सारे पापों को हरण करने वाला है वो हरि है, न तो ये हरि नहीं है चतुर्भुज वाला, वो भी है, क्योंकि उसको मानेंगे तो दूसरा व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है। जो शिव का भक्त है उसको नहीं मानेंगे, यही हमारे में दोष है। वेदांत ही आपको एक ऐसा तत्व को परिचय करवाएंगे, नहीं तो आप लोग सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, एक दूसरे के प्रति द्वेष कर रहे। कृष्ण को मानने वाले ऐसा भी एक संप्रदाय है, सभी कृष्ण को नहीं मानते, एक अंश को मानते, बाल कृष्ण को, महाभारत का कृष्ण हमारा नहीं, ऐसे भी है। क्या वो भगवान हो सकता है? नहीं, भगवान तो एक है, दो भगवान हो ही नहीं सकते, तत्व तो एक ही है, नाम भले अलग हो। तो इसलिए हरि मतलब यहां हरति पापम मिति हरि। यदि जो वैकुंठ में रहने वाला यदि हरि कहें तो शिव मानने वाले नहीं मानेंगे, उसको हम नहीं मानते, हमारा कैलाशपति शिव है। और शिव को मानने वाले को कहते हम उसको नहीं मानेंगे, हमारा विष्णु है। ऐसा भी है, जैसा कोई दो संत थे, एक शिव के उपासक और एक भगवान विष्णु के उपासक, घूमते घूमते कहां नर्मदा किनारे पहुंच गए और एक ही कमरे में रहे दोनों। सुबह उठ के अपने अपने पूजा किया, उसके बाद आपस में बात कर रहे थे, सबसे बड़ा भगवान कौन है? एक ने कहा शिव है। इतना कहते हुए जो विष्णु को मानने वाला, नहीं नहीं विष्णु बड़ा है सबसे बड़ा। बस उतने में हो गया बात, बात में शिव बड़ा है विष्णु बड़ा है। बढ़ते बढ़ते दोनों में गर्मी चढ़ गई, नहीं हमारा शिव बड़ा है। उन्होंने बोल दिया ना हमारा विष्णु बड़ा है। तो क्रोध आ गया, तो उन्होंने कहा दिखाओ कौन शिव बड़ा है विष्णु। शालिग्राम को उठा के उसके सिर में मार दिया, इन्होंने शिवलिंग उठा के उसके सिर में मार दिया, देखो हमारा भगवान बड़ा। क्या यही भगवान है? नहीं। क्या अभी तक आप उसको भगवान मानते थे? क्या पत्थर हो गया? भगवान एक है, दो नहीं हो सकता। ठीक है आप शिव को मानते हैं, जहां विष्णु के पास उसको शिव रूप से देखो। आप विष्णु को मानते हो, शिव मंदिर में उसको अपना आराध्य विष्णु रूप से देखो। विष्णु ही शिव रूप से बैठा है, शिव ही विष्णु रूप से बैठा है, कोई अलग नहीं है, एक ही जो तत्व है। सृष्टि करते समय में हाथ में रजोगुण प्रदान लेना पड़ेगा, रजोगुण के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। तो रजोगुण प्रदान होकर वो सृष्टि कर रहे, तभी शास्त्र ने उसको कहा, उसको ब्रह्मा कहा दिया। और पालन यदि आपको करना हो सत्वगुण आवश्यक है। संसारी जानते घर में यदि कोई यजमान क्रोधी हो गया वहां हो गया महाभारत, चलेगा नहीं घर। सत्वगुण होना चाहिए, सत्वगुण के बिना संसार नहीं चल सकता, जगत कहां से चलेगा। तो इसलिए इस पालन करते समय वही भगवान सत्वगुण को प्रदान बनाता है, हाथ में लेता है, तभी उसको हमने विष्णु कहा दिया। संहार करना हो आपको तमोगुण चाहिए, सत्संग सुनते सुनते यदि तमोगुण आ गए वही संहार हो जाता है सब। निद्रा भी क्या है, प्रलय माना है। चार प्रकार का प्रलय है, एक प्रलय नहीं है, एक नित्य प्रलय है। हम लोग नित्य प्रलय से आए हैं, अभी सुषुप्ति का नाम है नित्य प्रलय। प्रलय का मतलब क्या है, ये जो विशेष दर्शन हो रहे नाम रूप आदि इसका नहीं होना, यही प्रलय है और क्या, नित्य प्रलय। मृत्यु को भी नित्य प्रलय माना है। इतना ही अंतर है, सुषुप्ति में हम सोकर उसी शरीर में आते हैं, मृत्यु में सोकर हम दूसरे शरीर में आते, फर्क इतना ही, अंतर कोई है ही नहीं। इसलिए मृत्यु को भी नित्य प्रलय माना है। और दूसरा एक प्रलय है नैमित्तिक प्रलय माना है। नैमित्तिक का मतलब एक निमित्त, जैसा उस ब्रह्म का एक दिन, जैसा हमारा एक दिन के बाद हम सो जाते हैं, वैसे ही जो हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा है उसका एक दिन समाप्त हो जाता है, किंतु उसका एक दिन छोटा मोटा नहीं, जो गीता में आपने सुनाया होगा सहस्रायुग पर्यंत, चार युग है। सबसे पहले कृतायुग कहते अथवा सत्ययुग भी कहते, दूसरा है त्रेतायुग है जिसमें भगवान राम जी ने अवतार लिया, और तीसरा है द्वापर है भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, और कलयुग में हम लोगों ने अवतार लिया। तो अभी कलयुग है, कलयुग के आयु है 4,32,000 मानते हैं, उसका दुगुना करते जाइए। तो ऐसा ये जो चार युग है 1,000 बार बीत जाते हैं तभी ब्रह्म का दिन भी समाप्त होता है, गीता में स्पष्ट बता दिया है। और उसके बाद जो रात्रि आ जाती है, 4,000 बार बीतने के बाद जो रात्रि आती है, उस समय में जो भूर्भुवा तीनों लोक लय हो जाते हैं उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय, अर्थात ब्रह्म की रात्रि, हमारी नहीं उस ब्रह्म की रात्रि। और तीसरा एक प्रलय है प्राकृत प्रलय, जैसा हमारे 100 साल समाप्त जो हो जाते वो नित्य प्रलय है, वैसे ही हिरण्यगर्भ के ब्रह्म के भी 100 साल समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद दूसरा ब्रह्म आ जाएगा, उसका काम हो गया बस, 100 साल के बाद उसको भी रिटायरमेंट होना पड़ता है। तो 100 साल समाप्त होने के बाद जो प्रलय होता है उसको बोलते हैं प्राकृत प्रलय, चाहे तो नित्य प्रलय हो, नैमित्तिक प्रलय हो, प्राकृत प्रलय हो, हम लोगों को पुनः पुनः आना ही पड़ेगा, मुक्त नहीं होंगे हम लोग। किंतु जो चौथा प्रलय में यदि हम प्रवेश करेंगे वहां से हम मुक्त हो जाएंगे, उसी का नाम है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का मतलब जगत उत्पत्ति के कारण के ऊपर ही हम लोग विचार कर रहे, दुख का कारण को विचार कर रहे, उसका नाम है अज्ञान, अविद्या, माया। जो अज्ञान है, अविद्या है, माया जहां नष्ट हो गई उसके बाद आपका जन्म नहीं होता है। तो पिछली गीता में भगवान ने कहा जानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन, यह है आत्यंतिक प्रलय। तो आत्यंतिक प्रलय के बाद ही मुक्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है भगवान दो नहीं है, भगवान एक है। इसलिए यहां बता रहे त्रयम् त्यक्त्वा हरिम भजे, हरि का यदि आप भजन करना चाहते हो पहले हरि को समझो।